सूरत निसा को शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले हम मिलकर सब पढ़ेंगे। शुरू करते सूरत निसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नासु तक्कू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदतिन व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसा। लोगो, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी जान से इसका जोड़ा बनाया और इन दोनों से बहुत से मर्द और औरत दुनिया में फैला दी। सूरत निसा का आगाज बहुत जानदार है। थोड़ी सी बात इसके बारे में करने की जरूरत है। पूरे कुरान पाक में रिजाल के नाम की कोई सूरत नहीं। सूरत निसा के नाम पर औरतों को अल्लाह ताला ने हकूक दिए। इसी तरह एक मुस्तशरिक ने कहा कि अगर मुझे इस बात का यकीन ना होता कि ये कुरान मोहम्मद ने लिखा है, नऊज़ुबिल्ला, ये भी उनका ख्याल है, हम तो इसको नहीं मानते, तो मैं ये जरूर कहता कि इस कुरान को एक औरत ने लिखा है। हकीकत ये कि कुरान अल्लाह ताला की मखलूक औरत और मर्द दोनों के हकूक की ही नुमाइंदगी करता है, लेकिन जब आप कुरान पाक को तफसील से पढ़ते हैं तो डोमिनेंटली एक ख्याल जरूर आता है कि अल्लाह ताला की हमदर्दियां औरतों के साथ है। लेकिन अफसोस की बात है कि उम्मत मुस्लिमा जब अपने दीन से खुद राजी नहीं होती और उस तरह की बनके नहीं दिखाती जैसा बनना चाहिए, तो बाहर ये खबर फैल जाती है कि मुसलमान औरत को ओप्रेस करते हैं। हकीकत ये कि सूरत निसा जो है औरतों के मुख्तलिफ एंगल से हकूक का तहफ़ुज़ करती हुई दिखती है। इस सूरत में हम औरतों से मुतल्लिक और शादी ब्याह के मामले में कई चीजें पढ़ेंगे, जिसमें यतीम लड़कियों के हकूक जो अरब माशरे में नहीं दिए जा रहे थे, विरासत में हिस्सा नहीं देते थे औरत को, उस हिस्से को अल्लाह ताला दिलवाते हुए दिखते हैं। फिर बेहयाई में औरतों का क्या किरदार है। फिर इसी तरह घर टूटने नहीं देना। इस सूरत में हम बिगड़ी हुई औरत को कैसे बदसंवारा जाए और शौहर के मिजाज में अगर खराबी आ जाए तो फिर औरत उसको कैसे डील करे। यानी आप कह सकते हैं कि एटमोस्ट कोशिश करनी है इस बात की कि घर टूटे नहीं, घरों को बचाना। फिर आपने भी देखा होगा अगर कि सूरत निसा की पहली आयत में तकवा का लफ्ज 2 दफा आया, जबकि सूरत आल इमरान का एहतमाम किस पे था, वत्तकुल्लाह लअल्लकुम तुफ्लिहून। क्या पता चला कि एक सूरत के अख्तिताम में अल्लाह का तकवा, दूसरी सूरत के आगाज में अल्लाह का तकवा। तो हकीकत यह है कि जब अल्लाह का खौफ होता है ना, फिर मामला ठीक होते हैं। कोई बीवी अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकती पूरे तौर पर जब तक उसको अल्लाह का खौफ ना हो। इसी तरह शौहर का मामला है। तो एक तकवा हकूकुल्लाह का होता है, इसमें तो बहुत सारे लोग पास हो जाएंगे, लेकिन जो फेल होने वाला तकवा है वो इंसानों का तकवा है। हम सबको अपने अंदर इस तकवे को ढूंढना है कि क्या हकीकत में मैं दूसरों के मामले में दुरुस्त हूँ। फिर इसके बाद आप देखिए कि खुतबे निकाह के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये आयत पढ़ा करते थे, जिसमें 2 बार तकवा की ब्रैकेट लगाकर बता दिया गया कि तुम जब तक खुद अल्लाह से नहीं डरोगे तुम दूसरों को उसके हकूक नहीं दे सकते। फिर उसके बाद फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसालून बिही वल अरहाम, अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपने हक मांगते हो। निकाह क्या है? अगर आप अक्ल से पूछें तो एक निकाह शुदा जोड़े के आपस में मिलने और एक बगैर निकाह के मिलने में क्या फर्क है? चंद बोल इजाबो कबूल, लेकिन उसमें बड़ी चीज क्या है कि तुमने इन औरतों को अल्लाह के नाम पर जायज करार दिया। आप देखिए कि निकाह में जहां अल्लाह का नाम आता है, वली के साथ बात हो रही होती है और वो अपनी बेटी अल्लाह के नाम पर किसी को दे रहा है, तो ये है वो नाम जिसकी लाज रखनी होती है। और आप में से जो शादीशुदा सिस्टर्स हैं वो सोचिए, क्योंकि जो पढ़ाना होता है उसी पे सोचती हूँ, तो सुबह से मेरे जिन में एक अजीब सा ख्याल आ रहा है कि शौहर बीवी, अब आप जरा मैरिड सिस्टर्स जो है वो सोचिए, 20 साल, 25, 30, 40, माशाल्लाह आप में से बहुत सारों की मैरिड लाइफ 50 साल पुरानी भी होगी। सिर्फ 3 लफ्ज आपके सारे रिश्ते को तोड़ सकते हैं। और कितना मुख्तात है वो कपल कि जिसने पिछले 50 सालों में ये 3 लफ्ज नहीं इस्तेमाल किए। इतनी कच्ची डोरी है और इस एक छत के नीचे 2 मुख्तलिफ मिजाज के इंसानों को कोई जोड़ के तो दिखा, ये सिर्फ अल्लाह का नाम जोड़ता है। मत सोचिए कि औरतें जन्नत से आती हैं और मर्द जन्नत के हैं, हम सब इसी दुनिया के हैं। आज इस्लाम ने जो रूल्स दिए थे उनको पामाल करने की सजा क्या है कि वेस्ट में पलने वाले और वेस्टर्न स्टाइल रखने वाले, चाहे वो पाकिस्तान के किसी गांव में, अव्वल तो वो शादी करने को तैयार ही नहीं है क्योंकि लाइबिलिटीज हैं। शादी होती है तो कितने प्रॉब्लम्स हैं। और मैं सोचती हूँ कि सूरत निसा की सूरत में हम इस वक्त एक बहुत अहम टॉपिक कवर करने वाले हैं कि उम्मत मुस्लिमा अगर उम्मत वसत बनना चाहती है पहले उसको अपने घरों को ठीक करना होगा। ये बहुत बिग रीजन है आज हमारे नाकाम होने में कि आज हमारे सेटअप बदल गए, हम दूसरों को देखकर जीते रहे। कुरान तो हमें कुछ और ही जीना सिखाता है। तो हम इन सारी चीजों को पढ़ते हुए साथ साथ इस्लाम से मशवरा लेंगे, लेकिन यहाँ याद रखिए अल्लाह का नाम बहुत बड़ी बात है। कभी आपको अपने शोहर में कोई खराबी दिखे, आदत नहीं अच्छी, गुस्सा करते हैं कुछ भी, और इसी तरह शोहरों को बीवियों में 10 बातें दिखें, तो फौरन याद कर लीजिए कि अल्लज़ी तसालू नबी वलरहम, कि अल्लाह के नाम पे इसको हलाल किया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला के बारे में मैंने कहीं पढ़ा, वो कहते हैं कि मुझे अपनी बीवी पर कई बातों पर गुस्सा आता है, आता इंसान होने के नाते, लेकिन फिर मैं क्या सोचता हूँ कि ये औरत मेरा खाना पकाती है, ये औरत मेरे कपड़े धोती है, ये औरत मेरे बच्चों को देखती है, ये मेरी ख्वाहिश पूरी करती है, मुझे जिना से रोकती है। कोई बात नहीं, अगर इसके मिजाज में थोड़ा सा बिगाड़ है तो मैं सब्र कर लूंगा। कितना खूबसूरत लगता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम्हें अगर अपनी बीवी की कोई बात अच्छी ना लगे तो वो ढूंढ लो जो अच्छी है। हर इंसान के अंदर खैर भी है शर भी है, लेकिन आज वेस्ट के टूटने की बहुत बड़ी वजह उनका फैमिली सेटअप है। वो कौम है जो तीर और तलवार से नहीं डरी क्योंकि उनके हाथ में सब कुछ है, आज वो अपने फैमिली ब्रेकडाउन की वजह से इतनी परेशान है कि अब वापस वो इस्लाम को स्टडी करना शुरू हो गए कि क्या करें हमारे बच्चे घरों में रहें और क्या करें कि हमारे औरतें शादी पे तैयार हो जाएं और क्या करें कि ये सिंगल मदर्स का सिलसिला खत्म हो और शादी हो गई अब उसके बाद बच्चे पैदा नहीं करने, बच्चे पैदा हो गए तो मर्द भी एक दिन बच्ची को देखेगा तो माँ काम करेगी, बाप जाएगा तो माँ करेगी, ये इस तरह का सेटअप खराब हो गया। मैं आप सबको रिकमेंड करूंगी कि निकाह A to Z एक सेमिनार हुआ था, दो हिस्सों में हमने किया था, मैरिड लाइफ से पहले के हालात और मैरिड लाइफ, यानी दो दिनों में दो चीजें कवर की थी। जब कभी आपको फुर्सत मिले वेबसाइट से आप उसको डाउनलोड करें और उठते बैठते खाते पकाते सुन लें। मैंने बहुत सारे लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह उससे खैर लेते हुए देखा कि घर टूट जाते अगर हम ये ना सुनते, क्योंकि औरत और मर्द ना गाड़ी के दो पहिए हैं और बच्चे उसकी सीट्स हैं, पहियों के अंदर तवज्जुन नहीं होगा, एक पहिया बहुत बड़ा लगा दें एक छोटा लगा दें तो भी गाड़ी बैलेंस नहीं होगी, गाड़ी के अंदर आप ट्रैक्टर के पहिए लगा दें तो भी नहीं चलेगी और ट्रैक्टर में आप मोटरसाइकिल के पहिए लगा दें तो भी नहीं चलेगी। इतना अहम इशू है ये, जब तक घरों के अंदर सुकून नहीं होगा आप दीन का काम नहीं कर सकते। दीन की गाड़ी चलती शौहर बीवी के तावुन से है, और वो सिस्टर्स जो कुरान पढ़कर स्ट्रगलिंग फेज में आ जाती हैं और फिर वो रोती हैं और धोती हैं, कुरान की महफिल में तो और रोना आ रहा है, वहां दिल कर ऐसे बन जाए और इरादे हैं तमन्नाएं हैं ख्वाहिशें हैं और घर जाती हैं तो इस बात पर रोती हैं कि ये हो नहीं पा रहा। कभी गौर करके देखिए तो पीछे वजह क्या है, बेजोड़ शादियां। औरत बच्चे को इस्लामी स्कूल में भेजना चाहती है, बाप कहता है इसको किसी दुनिया के स्कूल में भेजना है, फर्क किस बात का, दीन का फर्क है। अगर मेरे और आपके घर में, यानी आप ये हम पांचवें पारे के शुरू में पढ़ेंगे वहां इंशाल्लाह आपको डिटेल थोड़ी सी फायदा देगी, लेकिन यहीं बात कर लूं तो बेहतर है कि अगर शादियां ठीक तरीके से होने लग जाए तो बाकी सारे मसले हल हो जाए। आइडियल फैमिली मुस्लिम फैमिली होती है, बाप और माँ और बच्चे, तीनों जब अल्लाह के हुक्मों के अंदर रहते हैं वो सोसाइटीज दुनिया में काम करती हैं। आप पूरी सीरत पढ़ लें और आप सहाबा की जिंदगियां पढ़ लें, सिर्फ नबी सल्लम की पूरी सीरत में एक मौका आपको दिखेगा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पे तोहमत लगी थी, सूरत नूर में हम पढ़ेंगे डिटेल्स। किसी बाहर के बंदे ने आपकी बीवी पर जिना तक का इल्जाम लगा दिया, इसके बावजूद अल्लाह के नबी के और हजरत आयशा के कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग, कोई नेगेटिव जुमले, उनका रूठ जाना, उनका ना मनाना कहीं नहीं दिखेगा। इवन आप पढ़ेंगे कि हजरत आयशा ने जब इजाजत तलब की कि मुझे कुछ दिन मेरी माँ के घर छोड़ दें क्योंकि उनको बुखार था, तो अल्लाह के नबी ने जाने दिया, इसके बावजूद आप वहां उनको मिलने जाते थे। कोई इज्तवाजी इशू आपको मुस्लिम सोसाइटी में नहीं दिखेंगे। चंद गिनती के, एक औरत को उसके शौहर ने कह दिया कि अंती अलैया कज़ाहरी उम्मी, तू मेरे ऊपर मेरी माँ की तरह, वो अल्लाह के नबी के पास आई, खाला उनका नाम था, और कुरान की आयतें उतर गई, कद समय अल्लाहु कौलल्लती तुजादिलुका फी ज़ौजिहा। चंद इक्का दुक्का वाक्या थे, ना वहां कोर्ट थी, ना काउंसलिंग थी, ना कोई आपस में मैनेज करवाने वाले थे, ना रिश्ते सिखाने वाले, इतना सिंपल माशरा था। और एक वक्त में एक एक मर्द की चार चार बीवियां भी थी, तीन तीन भी थी। आयतों में कुछ और काम आते उसको सामने रखेंगे इंशाल्लाह। फरमाइन अल्लाह काना अलैकुम रकीबा, यकीन जानो कि अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है, यानी अगर तुम बीवी पर ज्यादती करोगे तो याद रखो कि अल्लाह तुम पे बड़ा है। यतीमों के माल इनको वापस कर दो, अच्छे माल को बुरे माल से ना बदलो, और इनके माल अपने माल के साथ मिलाकर ना खाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है। याद रखिए कि पीछे हमने बात की थी कि सूरत बकरा और आले इमरान जो है ये बदर से लेके ओहद के दौर में नाजिल हुई थी, सूरत निसा जो ये ओहद के बाद नाजिल हुई थी। और ओहद की जंग में 70 सहाबा मारे गए, जाहिर है कि 70 औरतें अगर बेवा हो गई होंगी तो कुछ बच्चे भी यतीम हुए, तो एक नया इश्यू सोसाइटी में उठ गया कि अब इन बेवाओं के साथ क्या किया जाए और इन यतीमों के साथ क्या किया जाए। तो वो उस वक्त के रिवाज के मुताबिक पिससे हुए थे, अरब लोग ना तो औरतों को विरासत में हिस्सा देते थे ना लड़कियों को हिस्सा देते थे, पूरी विरासत घर का सबसे बड़ा बेटा ले जाता था क्योंकि जंगों में वो लड़ने लड़ने भिड़ने के काम आता था। अल्लाह ताला ने इस सूरत में कहा निवातुल यतामा, दो हक दो, और यतीम किसी सोसाइटी का बहुत पिसा हुआ हिस्सा हो सकता है लेकिन अल्लाह उनके हकूक भी अदा कर दिए। फरमाया अगर तुम ऐसा करोगे तो ये बहुत गुनाह होगा, और अगर तुमको अंदेशा हो कि यतीमों के साथ इंसाफ ना कर सकोगे तो जो औरतें तुमको पसंद है इनमें से दो दो तीन तीन या चार से निकाह कर लो। हाँ लेकिन अगर तुम्हें अंदेशा हो कि इनके साथ अदल ना कर सकोगे तो फिर एक ही बीवी कर लो, या इन औरतों को जौजियत में लाओ जो तुम्हारे कब्जे में आई हैं। बेइंसाफी से बचने के लिए ये बात करीने सवाब है, यानी हकीकत के ये करीब है। आयत का ये टुकड़ा हकीकत में जो अभी मैंने आपके सामने रखा, आयत नंबर 3 कह लीजिए, ये वो आयत है कि जिसको देखकर गुस्से में भरे हुए मर्द के मुंह पर भी स्माइल आ जाती है, और वो यूं स्माइल देते हैं और मूछों को बल देते हैं, और देखा ना चार शादियां। और ये वो आयत है जिसको देखकर चंद लम्हों के लिए सही लेकिन औरतें ऑफेंड जरूर होती हैं, ये मसला क्यों सूरत निसा में आ गया? सिर्फ ये वजह इसकी क्या है कि हम कुरान को वेस्ट की नजर से देखते हैं। मैं आपसे पूछती हूँ कि आप कितनी बहनें हैं? सिस्टर, आपके कितने भाई हैं? वन, आपके कितने भाई हैं? आपकी कितनी बहनें हैं? आपके कितने मामू हैं? आपके कितने चचे हैं? दो। कितनी खाला है ना, एक से ज्यादा। तो जब चार भाई बहने हो सकते हैं, जब मामू छह हो सकते हैं, जब भाई यानी हमने एक्सेप्ट किया हुआ है ना, तो ये बात कि एक मर्द की एक से ज्यादा शादियां हों, ये हम एक्सेप्ट क्यों नहीं करते? क्योंकि वेस्ट में लॉ है एक वक्त में एक शादी कर सकते हैं, और ये इश्यू बना भी तभी जब ये चीज थी। आज वेस्ट में एक से ज्यादा शादियों को लीगली अलाउ कर दिया जाए, जो कि लीगली तो इससे भी वर्स्ट कैफियत में हो रही है, तो फिर देखिए हमें ये भी बुरा नहीं लगेगा। जब कुरान को आप इस्लाम की रोशनी देखते हैं, रियलिस्टिकली देखते हैं, तो आप इसको नेमत समझते हैं। और दूसरी एक वजह यह कि हमारे जहनों में एक तस्वर है कि मर्द जब दूसरी शादी करेगा तो वो 16 साल 18 साल की एक चुलबुली सी लड़की होगी, बड़ी खूबसूरत होगी, और वो उसके पीछे लग कर आएगा। हालांकि आप सहाबा को देखिए, पहली बात देखिए इस आयत को, अगर आपने गौर से सुने तो अल्लाह का मशवरा ये कि एक ही काफी है, फवाहिदा। ये एक रुख्सत है, हुक्म नहीं है। अरबों में और पिछले अदवार में शादियों की कोई हद ही नहीं थी। सौ सौ शादियों का जिक्र मिलता है, हजरत सुलेमान की बीवियों का तज़किरा है, हजरत दाऊद के साथ इस तरह के नाम है। कोई हद नहीं थी, औरतों से शादी कर ली जाती थी। इस्लाम ने उसको लिमिटाइज करके चार पे रख दिया। एक वक्त में एक मर्द चार ही बीवियां रख ले, हफ्ते में एक एक, एक के पास दो दो बार चला जाएगा, तो दैट्स फाइन, उनके हकूक भी पूरे हो जाएंगे। ये लिमिटेड किया। फिर दूसरी बात यह है कि इसके साथ इंसाफ की इतनी कड़ी शर्त है, आगे एक आयत आएगी वहां हम सुनेंगे कि उसका आधा धड़ जो है वो क्यामत के दिन बेजान होगा जिस मर्द ने दूसरी बीवी के साथ इंसाफ नहीं किया। फिर तीसरी बात यह है कि आज अगर दुनिया के फिगर्स एंड फैक्ट्स देखें, आप खुद जाके गूगल पे देख लीजिए, दुनिया में हर दौर में औरतें मर्दों से जायद रही। सेकेंड वर्ल्ड वॉर की कहानियां जाके पढ़िए। ये जो लफ्ज मुझे और आपको मिसिस का बड़ा अच्छा लगता है ना, मिसिस वाला, ये कब हुआ? ये आप अपना सरनेम जो अपने हस्बैंड के नाम के साथ जोड़ती हैं, ये कब हुआ? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ। इतने मर्द कम हो गए थे दुनिया में, औरतें ढेरों ढेर थी, औरतों को मर्द नहीं मिलता था शादी करने के लिए। इतने में अगर कोई औरत, उसको कोई मर्द मिलता शादी होती, तो वो इतनी फख्र महसूस करती, अपने बाप का नाम कुर्बान कर देती अपने शोहर के नाम। हालांकि अगर आप देखें हजरत आयशा, कभी आप उसको मिसिस मोहम्मद नहीं सुनेंगे। हजरत उम्मे सलमा मिसिस मोहम्मद नहीं थी, हमेशा आयशा बिनते अबी बकर, फातिमा बिनते मोहम्मद, रुकैया बिनते मोहम्मद। इस्लाम का असूल है। तो असल बात क्या है कि जरूरत और हालात के तकाजे मुताबिक। दूसरी बात है, ये हुक्म उनको बुरा लगता है कि जो अपने शौहर के बारे में ये सोचती हैं कि वो दूसरी शादी करने जा रहा है। आप अगर उन औरतों के नाते से सोचें कि जिसके पास शौहर नहीं है, जिनके मर्द मारे गए जंगों में, मारे गए या कहीं भी मारे गए, कुछ भी हुआ, ऐसी औरत अगर घर मिल जाता है, सिक्योरिटी मिलती है, एक औरत है किसी कैंप में बैठी हुई है, तनख्वाह है उसका, कोई शहर में है नहीं, न्यू मुस्लिम है, रिवर्ट है, अब उसका कोई महरम है ही नहीं, तो अगर कोई मुसलमान ब्रदर इस सोच के साथ कि चलो इसको निकाह में ले आए ताकि इसकी इज्जत इस्मत महफूज हो, तो क्या बुरी बात है? उससे पूछे दूसरी शादी, क्या वो कहेगी नेमत है? लेकिन मैं और आप जो पहले से मैरिड होती हैं, हम कहते नहीं, हम अपने मर्दों को शादी नहीं करने देंगे, जिना आम। और आज आप देखिए कि वेस्ट में कौन कहते बोली कहनी नहीं है, वहां तो एक वक्त में चार शादियों की नहीं, यहाँ गर्लफ्रेंड और मिसेस की, के फिर एक को तलाक देना, एक को रखना, एक को तलाक देना, बड़ी अजीब बात है। एक दफा हम किसी काउंटर पे थे, कहीं भी होंगे, तो बातचीत चल रही थी, तो जो औरत थी तो वो मेरे हस्बैंड थे, तो हमें कहने की ये आपके हस्बैंड है, तो मैंने उनको बताया कि ये माशाल्लाह इतने साल से, कहती सो स्ट्रेंज, आप 15 साल से साथ हैं, यानी उनके लिए एक अजीब बात लगती है। तो याद रखिए एक बिग इश्यू है, इस पर फिर मैं कहूंगी कि डिटेल्स सुने, लेकिन इस्लाम से नाराज ना हो। अल्लाह के नबियों ने बेवाओं से शादियां की, सहाबा बेवाओं से करते, मुतल्लिकात होती, उम्र में बड़ी होती, खुद नबी सल्लम की बीवियों के बारे में हम सूरत अल्लाह साहब में जब डिटेल्स पढ़ेंगे आंखें खुल जाती हैं। ऐन जवानी का वक्त तो तीन बूढ़ी औरतों के साथ गुजार दिया, तो लिहाजा इस पे नाराज की जरूरत नहीं है। हमारा चूंकि कल्चर नहीं है इसलिए हमें बुरा लगता है, सिंपल सी बात है। अल्लाह का शुक्र है मैं भी मैरिड हूँ, आप भी मैरिड हैं, जो भी हैं या जो अनमैरिड भी सिस्टर्स हैं, इस मसले को कभी डिस्कस ही ना करें, डोंट मेक एन इश्यू। और आज है क्या, आप सब जितने सभी बैठे हैं, मैं आप सबसे एक और सवाल पूछती हूँ, आप में से किसके हस्बैंड की दो बीवी हैं, कि आप में से किसके बाप की दो बीवी हैं, और चार की तो बात नहीं, आपके मेरे खानदान में कभी आज तक मैंने आपने कोई ऐसा मर्द देखा कि जिसकी चार बीवियां? मुझे तो नहीं कोई याद आ रहा, इल्ला माशाल्लाह, मुझे जहन में भी नहीं आ रहा। पूरे खानदान में कितने मर्द हैं? शायद एक या दो हर एक के खानदान में होगा जिसकी दूसरी बीवी होगी, दो होंगी। नॉन इश्यू को इश्यू बनाया जा रहा है, दैट नेवर हैपन, ये आज नहीं है, ये एक वक्त और हालात की बात है। आज इशू है वो ये देखिए कि होमोसेक्सुअलिटी क्या है, ये इशू बनाइए। आप ये देखिए कि लड़कियां खुद घर से चली जाती हैं, ये इशू है। लड़की लड़का बगैर शादी के रहते हैं, बाद में लड़की को जिम्मेदारियों में डाल के लड़का भाग जाता है, ये इशू है। इस पे बात कीजिए, और लगता है कि सारा इस्लाम इस चीज में आ गया, और इस पर औरतों भी नाराज है। अगर किसी के दिल में हल्का सा भी ग्रज है ना, तो माफी मांगे, क्योंकि इसके साथ हम खुश नहीं रहेंगे। वरना याद रखिए कि दुनिया का हर रिश्ता हम ज्यादा चाहते हैं। आपका दिल चाहता है कि आपकी ज्यादा बहनें होती? ऑफ कोर्स दिल चाहता है, वो भी देखती वो भी देखती, हम कभी जाते कभी उधर जाते। आपका दिल चाहता है आपके ज्यादा भाई बहन हो? जब हम बाकी रिश्तों में इस तरह का महसूस करते हैं, तो अगर बिल फर्ज मेरे शोहर दूसरी शादी कर लेते हैं, हमारा क्या लिया? याद रखिए एक जुमला, बस अकेली बीवियां भी होती हैं ना, तो मर्दों की मोहब्बत नहीं मिलती, मोहब्बत अल्लाह देता है। सूरत अनफाल में आप पढ़ेंगे कि अल्लाह ने अल्लाह फबैना कुलूबिकुम, दिलों में मोहब्बत है, और बाद दूसरी बीवी करने के बाद ही तो पहली से मोहब्बत होती है, फिर तो कदर आती है कि वो अच्छी ही थी। और ऐसी हमारी मुस्लिम सिस्टर जो सिर्फ जज्बातियत में आके शौहर एक जायज जगह शादी करना चाह रहा है, वो कहती मुझे तलाक दो फिर करो, और अकेली जाके किसी जगह बैठने को तैयार है, लेकिन वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि हम दूसरे में रहे। और याद रखें कि हर दूसरी शादी से पहले अफेयर नहीं होता, ये आज फी जमाना है। सेक्रेटरी से अफेयर चला, कुलीग से चल गया, फुला से चल गया, तो वो तो वैसे भी चलेगा, वो तो और भी चीजें। तो लिहाजा दो शादियों को और आज के दौर में जो चीजें, इनको आपस में मिसअंडरस्टूड ना करें। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला किसी को आजमाइशों से बचाए। और आप दूसरी भी तो हो सकती है ना, आप हमेशा कुरान को पहली बीवी बनकर क्यों सुनते हैं? आप इसको दूसरी बीवी समझे, आप अकेली थे, आपके खुदा ना खासा हस्बैंड की डेथ को 10 साल हो गया, बच्चों के साथ तनहा जिंदगी बस कर रही हैं, इतने में आपको किसी दूसरे मर्द की तरफ से या किसी खानदान के ने कहा कि अच्छा और तो कोई जोड़ का मिलता नहीं, ये एक मर्द है जिसकी पहले से बीवी है, अगर वो उसकी बीवी मानती है या नहीं मानती इज नॉट अ इश्यू, तो आप सोचिए कि आपको वो हुक्म उस वक्त इस्लाम का कितना प्यारा लगेगा कि अल्लाह तेरा शुक्र है मैं अकेली डरती थी, मुझे घबराहट होती थी। फिर याद रखिए कि शादी में सिर्फ ताल्लुकात ही नहीं होते, इसमें इंसान को और बहुत सारी जरूरियात होती हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हम अल्लाह के अहकामात को मानने वाले बन जाएं। अगला इशू है मेहर का, वातुन्निसा सदुकाती हिन्न नहला, और औरतों के मेहर खुश दिली के साथ फर्ज जान पे अदा करो, अलबत्त अगर वो अपनी खुशी से मेहर का कोई हिस्सा तुम्हें माफ कर दें तो अब तुम मजे से उड़ा सकते हो। जी, अब असल बात है, आज मेहर के लफ्ज को जहेज से बदल दिया, शादी जहेज के बगैर तो हो नहीं सकती, मेहर का तस्करा भी नहीं। मैंने जहां भी पूछा, मुझे अक्सर ही हैरत ही हुई कि बहुत सारी सिस्टर्स को ये तक नहीं पता कि उनका मेहर क्या था। और दूसरा जुल्म क्या, 33 रुपए 32 पैसे, आज एक चॉकलेट भी नहीं आती होगी, एक वक्त की रोटी नहीं आती 32 रुपए की, बाज लोगों ने उस पर बीवी को रखा। अल्लाह ताला कहते हैं बीवियों को मेहर दो, जहेज ना दो। आज हमारा पूरा सेटअप बिगड़ा हुआ है। देखिए एक औरत है, इस्लाम का शादी का मिजाज समझ लीजिए, आप इस सारे इशू को समझेंगे। मर्द जिम्मेदार है, मर्द के जिम्मे फ्यूचर की भी जिम्मेदारी है। अब मेहर है एक टोकन मनी है, इस बात की आई एम सिंसियर। अगर आप लव सदुका को हाईलाइट कर लीजिए जो आपके सामने अरबी में लिखा हुआ है, तो सदुका के सिद्क सच्चा, यानी आई एम सीरियस, आई एम नॉट फ्लर्टिंग यू, इट्स नॉट अ टाइम बाउंड मैरिज, मैं सिर्फ पेपर के लिए शादी नहीं कर रहा। हक मेहर थोड़ा सा दिलवा कर मर्द को इस बात का पाबंद किया जाता है कि तुम अब सारी जिंदगी औरत के टेक केयर हो। आज औरतों का ये सारा मामला बिगड़ गया, जिसकी वजह से वो इन चीजों को ले नहीं सकते। अब हक मेहर के मिसाल है कि किसी ने $1,000 रखा था, अब क्या हुआ, मर्द ने 1,000 देना था। बीवी कहती है कि आप जैसा खूबसूरत इंसान मेरी जिंदगी में आ गए, मुझे नहीं चाहिए, आप रखिए, नो प्रॉब्लम। और बीवी मियाँ को इतनी अच्छी लगी, वो कहते मैंने कहा था 1,000 था, पर ऐसी खूबसूरत और इतनी समझदार किस्म की बीवी मिली है, मैं तो आपको 2,000 दे दूंगा। मोस्ट वेलकम, 2,000 भी दे सकते हैं, आप माफ भी कर सकते हैं, और अगर कम से कम 1,000 है आप मांगना चाहें मांग सकते हैं। हक मेहर मर्द के ऊपर लाजिम है, ना मिला वो मांग सकती है। खुदा ना खास्ता अगर शोहर का इंतकाल हो जाए तो बीवी अपने विरसे के साथ प्लस करके हक मेहर भी लेगी। हमारे यहाँ हक मेहर को तलाक मांगना समझ लिया, तलाक के मौके पर खुलता है पेपर, देखो हक मेहर क्या था, हालांकि इसका हक मेहर से कोई ताल्लुक नहीं, ना ये औरत की कीमत है और ये ना औरत को बेचा और खरीदा जा रहा है। तो लिहाजा ये आपस के मामलात में अच्छे तरीके से होता है, आज ही जाके ना पूछिएगा अपने शौहरों से, लेकिन रमजान के बाद पूछ लीजिएगा कि आपका हक मेहर क्या था। اور اپنے وہ مال جنہیں اللہ نے تمہارے لیے قیام زندگی کا ذریعہ بنایا نادان لوگوں کے حوالے نہ کرو، البتہ انہیں کھانے اور پہننے کے لیے دو اور انہیں نیک ہدایت کرو۔ بعض لوگ چھوٹی عمر میں بچوں کے ہاتھ میں پیسے دے دیتے ہیں، بعض عورتیں ان کو مینیج نہیں کرنا آتا تو مرد ان کو مہینے کی کمائی لا کر دیتے ہیں، پتہ چلا کہ 15 دن کے بعد ہی دال پکنی شروع ہو گئی، پیسے ختم ہو گئے۔ یہاں ایک مشورہ دیا گیا، پہلی بات اس آیت سے یہ پتہ چلتی ہے کہ مال کی ویلیو پہچانو، ڈونٹ ویسٹ یور منی۔ دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ گھر میں جس کو زیادہ اچھی منی مینجمنٹ آتی ہے وہ گھر کے خرچے کو مینٹین کرے۔ اگر مرد سمجھدار ہے تو مرد کے ہاتھ میں پیسہ رہے اور وہ بیوی کو چیزیں لا کر دے اور بیوی استعمال کرتی ہے اور اس کو پاکٹ منی کے طور پہ الگ سے کچھ دے دے۔ دوسری صورت ہے کہ مرد بہت لاؤ والی ہیں، وہ تو جیب میں رکھ کے بھول جاتے ہیں اور وہ دھلی جاتے ہیں پیسے اور گری جاتے ہیں، ادھر ڈال دی ادھر ڈال دیے، تو ایسی صورت میں پھر کیا کریں گے؟ پھر عورت لے گی۔ بعض لوگوں نے اس آیت کو بھی اتنا مس انڈرسٹوڈ کیا کہ عورتیں اتنی ناراض ہوتی ہیں کہ نعوذ باللہ شاید اللہ تعالیٰ نے ساری زیادتی ان پہ کی۔ آپ سورت نساء پڑھتے ہوئے ضرور اس چیز کو محسوس کریں گے کہ آج کے دور میں حقیقت میں لوگ جو ہیں قرآن کو مس انڈرسٹوڈ کرتے ہیں، تو لہٰذا گھر کے مال کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، اور یتیموں کی آزمائش کرتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کے قابل عمر کے کو پہنچ جائیں، پھر اگر تم ان کے اندر اہلیت پاؤ تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو۔ ایسا کبھی نہ کرنا کہ حد انصاف سے تجاوز کر کے اس خوف سے ان کے مال کو جلدی جلدی کھا جاؤ کہ وہ بڑے ہو کر اپنے حق کا مطالبہ کریں گے۔ یتیم کا جو سرپرست مالدار ہو وہ پرہیزگاری سے کام لے، اور جو غریب ہو معروف طریقے سے کھائے۔ پھر جب ان کے مال ان کے حوالے کرنے لگو تو لوگوں کو ان پر گواہ بنا لو، حساب لینے کے لیے تو اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی یتیموں کو بھی جب ان کے مال دو تو ضائع نہ کرو۔ اس میں ایک اشارہ ملتا ہے کہ وہ مال جو تمہارا ذاتی نہیں ہے اس کے لیے بھی کیئرفل رہو۔ دیکھیے بعض لوگ یتیموں کے مال کو کھلے ہاتھ سے خرچ کرتے ہیں کیونکہ چلو ہم کون سے اس کے لائبل ہیں۔ اسی طرح دین کے نام پہ کچھ چیزیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسجدوں کی ذمہ داری دے دی، کبھی اسکولس کی دے دی، کبھی اداروں کی دے دی، ایک ایک پینی کو نظر میں رکھے، کیونکہ جہاں مال ضائع ہوگا وہاں سے برکت چلی جائے گی، کیونکہ مال جو ہے انسان کے لیے قیامن ہے۔ کہ ایک ڈالر بعض دفعہ جیب میں نہ ہو تو آپ پیاس کی وجہ سے تڑپ سکتے ہیں، پانی نہیں لے کے پی سکتے، آپ کو کئی میل چل کے جانا پڑے گا ایک ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے کیونکہ بس کا ٹکٹ نہیں لے سکتے۔ تو ڈونٹ ویسٹ یور منی، یہ آج امت مسلمہ کا ایک بہت بڑا ایشو بن چکا ہے کہ ہم منی ویسٹ بہت کرتے ہیں۔ تو اسلام منی استعمال کرنے سے نہیں روکتا، منی کا استعمال پسندیدہ ہے، وہ صدقہ ہے، لیکن جہاں ضائع ہوگی اس کو اللہ تعالیٰ بہرحال پوچھے گا۔ آگے سے اب وراثت کی باتیں۔ اسلام اتنا خوبصورت دین ہے، صرف زندگی بھر کے لیے ہمیں نصیحتیں نہیں کرتا بلکہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی انسان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا یہاں سے آگے اب چلتا جائے گا۔ وصیت اور وراثت دونوں تینوں کو اکٹھا پڑھ لیں، بعد میں میں اپ کروا دوں گی۔ للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا، اور عورتوں کے لیے اس مال میں حصہ ہے جو ماں باپ اور قریبی رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، خواہ تھوڑا ہو یا بہت، اور یہ حصے اللہ کی طرف سے مقرر ہیں۔ اور جب تقسیم کے موقع پر کنبے کے لوگ اور یتیم اور مسکین آئے تو اس مال میں سے ان کو بھی کچھ دو، اور ان کے ساتھ بھلے مانسوں کی سی بات کرو۔ لوگوں کو اس بات کا خیال کر کے رہنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے بے بس اولاد چھوڑتے تو مرتے وقت انہیں اپنے بچوں کے حق میں کیسے کیسے اندیشے لاحق ہوتے۔ بس چاہیے کہ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، کہ وہ اللہ کا خوف رکھیں اور راستی کی بات کریں۔ اِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا، اور جو لوگ ظلم کے ساتھ یتیموں کے مال کھاتے ہیں در حقیقت وہ اپنے پیٹ آگ سے بھرتے ہیں، وہ ضرور جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھونکے جائیں گے۔ کیا پتہ چلا کہ مال کی تقسیم کے وقت اللہ کا خوف لازم ہے، کیونکہ جو مر جاتا ہے اس نے تو آ کے نہیں پوچھنا، لیکن الحی اور القیوم ذات پوچھے گی اگر ہم نے کسی کے مال کو درست طریقے سے بانٹا نہیں۔ یہ آیت جس کو آیت وراثت کہتے ہیں، اسلام کا خوبصورت قانون دیکھیے، ایک رکوع کے اندر پورا قانون وراثت بڑھا دیا۔ اس کو اب علم الفرائض کہتے ہیں، یعنی وہ علم جس کا سیکھنا فرض ہے۔ میں آپ سے اور خود سے پوچھتی ہوں کہ ہمیں کتنا کو پتا ہے کہ کس کے کیا حصے۔ لوگ اس حصے کو ٹاپک کو بالکل بورنگ سمجھ کر چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ آپ دیکھیے اتنا انٹرسٹنگ۔ اور میں کہتی ہوں کیا کوئی ایم بی اے پڑھنے والا میتھ جانتا ہوگا، اور کیا کوئی اکاؤنٹنگ کرنے والا یا اکنامک سیکھنے والا منی میٹرز کو جانے گا جو ان چند آیتوں میں بیان کر دیا گیا۔ آئیے دیکھتے ہیں، پہلا حصہ لکھ لیجیے آیت نمبر 11 کا، بچوں کو کیا ملے گا۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم، تمہاری اولاد کے بارے میں اللہ تمہیں ہدایت دیتا ہے، مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر ہے، یعنی بیٹے کو دگنا بیٹی سے، یہ نہیں کہا کہ بیٹی کو آدھا بیٹے سے، کیوں کئی ماتھے ادھر ہی ٹھنک جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتی ہوں کہ ایک بھائی اور بہن تھا، और बाप का इंतकाल हो गया। बाप ने $1,000 छोड़ दिए। 1,000 में से 333 333 बेटी को मिलेंगे एंड 666 बेटे को मिलेंगे। आप कहते हैं हूँ, यही तो हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन है, दिस एंड दैट। नहीं, आप जरा सोचिए, दोनों अनमेरिड थे। अब बेटी को 333 मिल गए, रख दिया उसने। वो तो फिर जाके मर्दों को ही दे आती है, उनके नाम ज्वेलर्स होते हैं और उनके नाम कोई ब्रांड्स चलाने वाली चीजें होती हैं। औरतें भी तो शॉपिंग में खर्च करती हैं, क्योंकि इस्लाम ने औरतों पे जिम्मेदारी नहीं डाली। इधर आते हैं भाई पे, 666 उसको मिल गए थे, 666। अब क्या हुआ, कुछ अरसे के बाद बहन की शादी का मौका आया। अब जब बहन की शादी हमारे कल्चर के मुताबिक हुई तो उस बेचारे को पैसा लगाना पड़ा। हालांकि इस्लाम बिल्कुल नहीं कहता कि शादी के मौके पे लड़की वालों का या बहन की शादी पे भाई का एक पैसा भी लगे। किस्सा मुख्तसर, चलिए $333 उसके लगे बहन के ऊपर। उसके बाद उसने 2 साल बाद अपनी शादी करनी है। अपनी शादी के मौके पर उसको अपनी बीवी को हक मेहर देना है। वो भी कहती है मैं 350 से कम नहीं लूंगी, भाई के हाथ में क्या रहा। उधर उस बहन की जब शादी होती है तो उसको अपने मियाँ से फिर 333 मिल गया। तो कल जिसको 333 मिला था उसका अपने शोहर से मेहर लेकर 666 हो गया, और इधर जिस भाई को 666 मिला था उसने आधा उधर दे के फिर खाली हाथ रह गया। किसने इंसाफ करना है? अल्लाह ने करना। मत इन छोटी छोटी चीजों पे रहे, अल्लाह को खूब पता है लाइबिलिटीज के साथ ये सारी चीजें चलती हैं। अब ये पहली सूरत कब थी कि जब बेटे बेटियां दोनों हैं किसी की, तो सिंपल रेशियो बता दिया 2:1 का। अब दूसरी सूरत है कि सिर्फ बेटियां, तो क्या किया जाएगा? अगर मैयत वारिस 2 से ज्यादा लड़कियां हों तो इन्हें तरके का 2/3 हिस्सा दिया जाएगा। और तीसरी सूरत क्या है कि एक ही बेटी अकलौती। हमारे यहाँ एक इश्तेहार बहुत मारूफ है, लाखों की इकलौती वारिस, करोड़ों की वारिस, उसका रिश्ता दरकार है। अकलौती कभी पूरी वारिस नहीं होती। अल्लाह ताला क्या कहते हैं, अगर एक ही लड़की वारिस हो तो आधा तरका इसका है। आप फील कर सकते हैं, हमारे उर्दू की पूरी 3 लाइनें भी नहीं बनी, बच्चों के हर पॉसिबल वे को अल्लाह ने पेश कर दिया। बेटे बेटियां भी हैं तो 2:1, सिर्फ बेटियां बेटियां तो 2/3 को सारी बेटियों में बराबर बांट दो, सिर्फ एक बेटी है तो आधी जायदाद उसको दे दो, और एक बेटा है उसका जिक्र नहीं लेकिन वो ऑब्वियस है कि पूरी जायदाद उसकी है, क्योंकि बाप और बेटे की जायदाद एक ही होता है। खत्म। सिर्फ 3 लाइनों में पूरी दुनिया के बेटों बेटियों को अल्लाह ने हक दिला के अब आगे माँ बाप के हिस्से कि किसी के मरने पर उसके माँ बाप को क्या मिलेगा। अगर मैं ये साहिब औलाद हो तो इसके वालदैन में से हर एक को इसके तरके का 1/6 हिस्सा मिलेगा, यानी 1/6। और अगर वो साहिब औलाद ना हो और वालदैन ही इसके वारिस हो तो माँ को 1/3 मिलेगा, और अंडरस्टूड है कि बाकी 2/3 बाप को मिल जाएंगे। और अगर मैयत के भाई बहन भी हों तो माँ 1/6 हिस्से की हकदार होगी। ये सब हिस्से उस वक्त निकाले जाएंगे जबकि वसीयत जो मैयत ने की हो पूरी कर दी जाए, और जो कर्ज इस पर हो उसको अदा किया जाए। दैट्स इट, खत्म। माँ बाप के हिस्से फिर 3 लाइनों में खत्म। सारी पॉसिबल वेज है, अब मैं इस वक्त डिटेल में नहीं जा पाऊंगी। आपके बच्चे हैं और नहीं है, उस सूरत में आपके माँ बाप को क्या मिलना है तो क्या मिलना है, आपके अपने मरने वाले के बच्चे नहीं तो क्या मिलना है। फिर दूसरी सूरत है कि आपके माँ बाप के और बच्चे यानी आपके भाई बहन है तो माँ बाप को क्या मिलना है, वो नहीं है तो क्या मिलना है। 2.5 लाइनों में अल्लाह ने माँ बाप के सारे हकूक देखेगा। ये सब कुछ उस वक्त होगा जब सबसे पहले वसीयत पूरी की जाएगी और कर्ज अदा किया जाएगा। बहुत दफा लोगों को बच्चों को देना बहुत आसान लगता है, बल्कि कहते हैं और कमाते हैं किस लिए, बूढ़े माँ बाप को नहीं देना चाहते। तो फरमाया तुम नहीं जानते कि तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारी औलाद में से नफे के एतबार से कौन करीब तर है। ये हिस्से अल्लाह ने मुकर्रर कर दिए, और अल्लाह यकीनन सब हकीकतों से वाकिफ है और सारी मसलतों का जानने वाला है। क्या फरमा दिया, ये अल्लाह की बांट है, इसको पूरा करना होगा। और अब इसके बाद शौहर और बीवी का हिस्सा। आप देख रहे हैं कि एक पैराग्राफ भी पूरा नहीं हो रहा, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला सबको हिस्से दिलवा रहे हैं। कैसे, वलकुम निस्फु मा तरका अज़वाजुकुम, और तुम्हारी बीवियों ने जो कुछ छोड़ा हो इसका आधा हिस्सा तुम्हें मिलेगा अगर वो बे औलाद हो, और वरना औलाद होने की सूरत में तरके का 1/4 तुम्हारा है। नोट कर लिया आपने, कुछ भी नहीं हुआ, आपने गौर से सुना ही कोई नहीं है, आपकी छुपाई हुई आधी दौलत आपके मियाँ को मिल रही है। बीवी अपनी जिंदगी में खुद कमाए तो भी वो उनका है, अगर उनको गिफ्ट मिलता है तो भी उनका। यहां से एक बात तो ये नोट कर लीजिएगा कि इस्लाम में औरत की मनी औरत की है, हस्बैंड डोंट हैव एनी राइट। औरत मियां बीवी मिलजुल के चलता है घर, इट्स फाइन इट्स गुड, लेकिन औरत को माँ बाप से कुछ विरसा मिला, उनको कुछ किसी गिफ्ट मिला, वो औरत का। अब एक औरत मर रही है जिसके अपने पर्सनल पैसे थे, तो उसके शौहर को उसकी जायदाद का आधा मिलेगा कब, जब औरत के बच्चे ना हो। अब औरत के बच्चे क्या मतलब, मर्द के नहीं, इस शोहर से हैं तो नहीं, किसी और से भी नहीं है। बाज़ दफ़ा शादी होने से पहले पहले किसी और शोहर से बच्चे होते हैं तो मर्द को आधा मिलेगा, और दूसरी सूरत है वरना औलाद होने की सूरत में तरके का एक चौथाई हिस्सा। लेकिन इस सबसे पहले वो वसीयत जो कर चुकी हो उसको पूरा किया जाएगा, और जो कर्ज उन्होंने छोड़ा हो इसको अदा किया जाएगा। अब अगली सूरत है, बीवी को क्या मिलता है शोहर से, और तुम्हारे तरके में से चौथाई की हकदार वो होगी अगर तुम बे औलाद हो, यानी शोहर का अल्लाह ना करे इंतकाल बीवी से पहले हो जाता है और बच्चे भी नहीं है, तो 1/4 जो भी उसका विरसा है, इनहेरिटेंस है, वो बीवी को मिलेगी। वरना साहिब औलाद होने की सूरत में इनका 8वां हिस्सा है, बात इसके कि जो वसीयत तुमने की वो पूरी कर दीजिए और जो कर्ज तुमने छोड़ा उसको अदा कर दिया जाए। अब आप यहाँ नोट कीजिए, ये सारी बातों को देखते हुए कौन इतने राइट्स दिलवा सकता, बीवी को कब क्या मिलना है, मर्द को कब मिलना है, क्या मिलना है। अल्लाह सुबहान तआला ने ये सारी चीजें बताकर एक और चीज, आखिरी चीज भाई बहनों के हिस्से, ये अगर जहां मैं जुमला बोलती हूँ अगर आप इसी एक आयत के अंदर ही लिख लें तो आपको इसमें सब हिस्से मिल गए। अब एक आखिरी सूरत भाई बहनों की रहती है, तो फरमाए अगर वो मर्द जो औरत जिनकी मीरास तकसीम तलब है वे औलाद भी हो और इनके माँ बाप भी जिंदा ना हो, मगर इसके एक भाई या एक बहन हो तो भाई और बहन हर एक को एक छठा हिस्सा मिलेगा, भाई बहन एक के से ज्यादा हो तो कुल तरके के एक तिहाई में सब शरीक होंगे, जबकि वसीयत जो की गई है उसको पूरा कर दिया जाए और कर्ज जो मैयत ने छोड़ा हो इसको अदा कर दिया जाए, बशर्ते कि वो नुकसान देने वाली वसीयत ना हो। ये हक है अल्लाह की तरफ से और अल्लाह दाना बीना और नरम हो है। खत्म विरासत के कानून, पूरी बात समझ आ गई। अब इसकी डिटेल आप सुनिए, बहुत डिटेल से हम पढ़ते हैं, मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसको हम जमा तफरीक मैथमेटिक्स के हिसाबों के साथ भी करते हैं, जो कभी आपने भी मैथ के पेपर में किया होगा। एक शख्स फौत हुआ, उसने इतना तरका छोड़ा, दो बेटे दो बेटियां छोड़ी, हिसाब लगाए तो हम करते थे ना, आपने भी बहुत सारे ने जिन्होंने पाकिस्तान इंडिया से किया तो किया होगा ना, तो इस वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इतना अहम टॉपिक है कि इसको पढ़े बगैर किसी का इल्म पूरा हो नहीं सकता। लेकिन इन सब को इधर छोड़ के इस वक्त दो चीजें जो बार बार आई उस पर बात कर लेते हैं, वो बहुत अहम है। मिन बाद वसीयत, वसीयत पहले पूरी की जाएगी। वसीयत क्या होती है, एक इंसान के माल में से 1/3। मैं आपको इस्लाम का नजरिया थोड़ा सा बता दूं कि इस्लाम में माल को खर्च करने की मोस्टली डिफरेंट सूरतें होती हैं। एक होता है आप अपनी जिंदगी में खर्च करते हैं, तोहफा देते हैं, आप मुझे कुछ देते हैं मैं आपको कुछ देती हूँ, आप भाइयों को बहनों को जिसको दें, ये तो एक आपकी मर्जी है जो मर्जी दें। हाँ ये है कि आप अपने बच्चों को गिफ्ट दे रहे हैं तो कोशिश करें कि इंसाफ के साथ दें। जिंदगी भर आप और मैं अपना माल जिस तरह चाहें खर्च कर सकते हैं। मेरी जिंदगी में मैं अपना पूरा माल किसी को दे दूं, मैं पूरा माल डोनेट कर दूं, मैं अपने बेटों में बेटियों में बांट दूं, इट्स फाइन। लेकिन अगर मैं दुनिया से जाने से पहले वसीयत करूं कि मेरे बाद मेरा माल किसको दिया जाए, तो उसकी शरायत है। नंबर एक, आई ओनली ओन 1/3 ऑफ दैट। जिंदगी में मेरे पास $1,000 थे, मैं उसको जिसको जहां मर्जी दूं, खाला को, पुप्पो को, दोस्त को, किसी को दे दूं, इट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। मरने के बाद मेरा हक सिर्फ 1/3 का रह गया। क्यों? अल्लाह वारिसों को महरूम नहीं करना चाहता। अब जब 1/3 के अंदर मैं किसी को देती हूँ, किसी इदारे को देना है, किसी मस्जिद को देना है, किसी गरीब रिश्तेदार को देना है, कजन को देना है, किसी अडॉप्टेड सन को देना है, नो प्रॉब्लम, आप दे सकते हैं। लेकिन फिर 2/3 आपके बच्चों को मिलेगा, आपके वारिसों को, आपके शोहर को, जिनको मिलना है। दूसरी सूरत यह है कि मर्द वसीयत के अंदर हम किसी ऐसे को नहीं दे सकते जिसको पहले से मिल रहा है। ला वसीयत ली वारिस, चार लफ्ज है, नहीं है वसीयत वारिस के लिए, यानी आपके बच्चों को तो पहले ही मिल रहा है। आप कहते हैं अच्छा 1/3 मेरे सबसे छोटे को दे दो क्योंकि इसे मेरी बड़ी खिदमत की, और ये मेरी चूड़ियां मेरी इस बहू को दे देना, इसने बड़ी खिदमत की, वी कैन डू दिस। सेम थिंग इसका ऑपोजिट है कि आप नहीं कर सकते, कि आप कहते हैं मेरे फलां बेटे को बिल्कुल ना देना। ये कितना एक इस्लामी मुल्क में गैर इस्लामी ऐड छपता है कि मैं अपने बेटे को आग करता हूं, तो लिहाजा अल्लाह ने जो हक दे दिया उसको लीजिए। दूसरी चीज है यहां कर्ज की, इसको दिल बोझल के साथ कहूंगी कि सबसे पहले मरने वाले की विरासत में से, उसकी चीजों में से कफन दफन के बाद कर्ज निकलता है। अगर माल ज्यादा है कर्ज कम है, तो कर्ज को खत्म करके जो बचेगा उसके वही हिस्से होंगे जो आज हमने कर दिए। लेकिन अगर कर्ज ज्यादा है और माल थोड़ा छोड़ा है तो क्या होगा? एक फूटी कोड़ी नहीं मिलेगी बेटों बेटियों को, बीवी को, माँ को। अब यहां पर मैं उसी दुख को दोहरा लें जो हमने सूरत बकरा के एंड पे किया था, कि अगर हम अपनी जिंदगी में चाहे अपनी खुशी के कर्जे लेते हैं या ना खुशी से, तईशात के, लग्जरियस लाइफ के, घरों के, गाड़ियों के, कार्ड्स के कर्जे, तो अल्लाह ना करे अगर हम दुनिया से जाएंगे सबसे पहले हमारा कर्ज अदा होगा। आप कर्ज को एज इट इज बच्चों के नाम पे मूव करवा दें और उनको पैसा बांट दें, ये गैर इस्लामी है। आपको ये बातें बड़ी अजीब लगेंगी जो फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, लेकिन आज उम्मत मुस्लिमा क्यों उम्मत वसत नहीं बन रही, ये मसाइल है हमारे साथ। ये जो हमारी जान फंसी हुई ना इधर से भी और उधर से भी, और हम जो कहते हैं कि ये हो नहीं सकता वो हो नहीं सकता, उसकी वजह ये है कि हम अपने जूतों में पाँव नहीं डाल रहे, हम गैरों के जूतों में पाँव डाल रहे हैं। देखिए आप अपने से जरा छोटा जूता पहने ना आपके पाँव घुटेंगे, और अपने से जरा बड़ा जूता पहनेंगे ना तो आप चल ही नहीं सकेंगे, राइट को लेफ्ट में लेफ्ट को राइट में पहने तो आप गिर जाएंगे। आज उम्मत मुस्लिमा राइट जूते को लेफ्ट फुट में और लेफ्ट को राइट में डाल रही है, और इसके पीछे वजह क्या है? हुब्बुद दुनिया। आज मैं और आप जितने लोग इस कुरान से इस वक्त फायदा उठा रहे हैं, जो बाद में उठाएंगे, जो बाहर से उठा रहे हैं, अगर सिर्फ हम अपने तक रखें इसको कि मैंने कम अज कम आज के बाद कोई ऐसी कर्ज वाली चीज, उधार वाली चीज नहीं लेनी कि जो मैं अदा ना कर सकूं। देखिए अभी उसमें इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं हो रही, वो तो हम पीछे करके वो तो आगे करेंगे जब आएंगी सो आएंगी, इंटरेस्ट वाले कर्ज की तो बात अभी हुई कोई नहीं है कि आपका लोन विद इंटरेस्ट है या विदाउट इंटरेस्ट है, अभी तो सिर्फ लोन की बात है। अल्लाह के नबी उस शख्स की नमाज़े जनाजे ही नहीं पढ़ाते थे जिस पे कर्ज है, इजाजत है, पीछे आपने खुद पढ़ा आयते दैन में, लेकिन वो कौन से मजबूर पसंदीदा नहीं है। शहादत के बाद इंसान के सारे गुना माफ हो जाते हैं, कर्ज नहीं माफ होता, यानी शहादत के सारी लाइबिलिटी माफ है, कर्ज अदा करेंगे तो जन्नत में जाएगा। आप हज पे जा रहे हैं, आप अपने कर्ज खा को पहले कहें कि मैं देता रहूंगा, क्या मैं हज कर लूं, वो कहता है कर लें तो आप कर सकते हैं, इतना हुक्म है। तो फिर आप बताएं कि नींद कैसे आती है? हदीस में आता है कि मैयत आसमानों जमीन के बीच में हैंगिंग रहती है मुअल्लक, जब तक उसका कर्ज अदा ना किया जाए। कोई फौत होए तो उस वक्त ऐलान करना चाहिए कि इसके जिम्मे को कर्ज है तो मुझे बताइए, हम अदा करेंगे, अदा करना है तो उनसे डील कर लीजिए, माफी मांगनी है माफ कराना है करा ले, ताकि कब्र में वो सुख चैन से रहे। कभी भी सहाबा ने इस तरह कर्ज नहीं लिए थे जो आज उम्मत वसत लेके बैठी हुई है। और ये वजह है मेरी बहनों कि हम आज अल्लाह के दीन के लिए कैसे निकले, हमारी लाइबिलिटीज बहुत है। एक मर्द कमाता है, आप मुझे सच बताइए घर की ग्रोसरी का खर्च कितना है? मैं सिर्फ रफ एस्टिमेशन से कह सकती हूँ कि एक औसत घर का खर्च $500 का होगा, जिसमें आपकी ग्रोसरी भी आ जाएगी, दूध पानी भी आ जाएगा, चले बिल लाइबिलिटीज गैसेस के डाल के $1,000 से डोंट थिंक सो के कोई ज्यादा जी सकता है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर दो बच्चे तीन घरों में हैं जो लोग कितने, इसके बावजूद क्यों कमाना पड़ता है? बाप भी कमाता है, माँ भी कमाती है, फिर बेटी बड़ी तो वो कमा रही है, बाप कमा रहा है। आप नोट करके देखें हम जितना कमाते हैं उसका 90% अपने लोन उतारते हैं, अपनी लाइबिलिटीज उतारते हैं। इस वजह से आज मासूम जवानों के ऊपर मुस्कुराहट नहीं है, इसलिए शौहर बीवी साथ रह ही नहीं सकते, वो आता है तो वो चली जाती है, वो नाइट शिफ्ट पे तो वो इधर है, इसलिए घरों के सिलसिले बिगड़े हैं। अगले पारे में अल्लाह ताला हमें इसके बारे में डिटेल्स देगा, तो ये सारा कुछ हमारा इधर ही चल रहा है। आज हमने सारा सेटअप बदल दिया, तो दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें कर्जों के बोझ से आजाद करे, और इसके लिए दुआएं भी हैं। ये जो कल के सबक में दुआ थी, अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा, सूरत आले इमरान की आयत है, तो इसके बारे में आपने फरमाया कि इसके साथ एक और दुआ है, जिनके पास आसनुल बयान है उसी आयत की तफसीर में वो दुआ लिखी हुई है, तो आप लोग वहां से जाके ले सकते, लेकिन इंशाल्लाह हम आप लोगों को भेजेंगे। आपने एक साहबी से कहा कि अगर तेरे पर पहाड़ों के बराबर कर्ज भी होगा तो अल्लाह उसको निकाल देगा। ये दुआएं भी पढ़िए, आगे से कर्ज लेना छोड़िए, सारे वो क्रेडिट कार्ड फाड़ के फेंक दीजिए जो कर्ज के प्लस आपको इंटरेस्ट में डालते हैं। जितनी जिंदगी है, हमारे बड़े है तो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन इतने खूबसूरत जुमले बोल गए जो हमारे लिए जरबुल मिसल है, चादर देख कर पौन फैलाओ। सच है ना, आज चादर छोटी पाऊं बाहर, बाहर इतनी बड़ी तख्ती आप विला दे के वो क्या खुशकिस्मत है, चलो दे दो इनको बेटी, रही से खानजादे बेटी को खुश रखेंगे, शादी के बाद पता चला 10% दिया हुआ है, बाकी अभी 20 सालों में देना, बेटी भी जॉब करके इस घर को पे ऑफ करेगी। आप किसी का घर देखें, आज भी हमारे अपने मुल्क इंडिया और पाकिस्तान देखिए, आज भी वहां कम अज कम लोगों के घर अपने तो हैं, आज भी उनकी गाड़ियों पे किस्तें तो नहीं है। एक सिस्टर की बात याद आती है, पाकिस्तान में घर लेते देते हैं लोग तो खुशी होती थी, मुबारक लोग देते हैं, यहां लेते हैं तो गम पड़ जाता है। ठीक है, मुझे कोई हक भी नहीं है, और हमारा गुमान है कि जिनके हैं अल्लाह ने उनको पूरी अपने पास से दिए, किसी पे कर्ज नहीं होगा, लेकिन ट्रेंड यही बन चुका है। आज उम्मत वसत जब ये जुमले बोले, आज के दौर में कौन कैश पे ले सकता है, तो ये गलत जुमला है। आज के दौर में इंटरेस्ट के बगैर कैसे हो सकता है काम, तो ये गलत जुमला है। मत सोचिए कि हम इस तरह के काम करके दुनिया में इस्लाम देंगे, जब हमने दूसरों के सिस्टम को अपना लिया हम उनको कैसे देंगे। हमें क्या करना था, हम दूसरों को इस्लाम का इकोनॉमिकल सिस्टम पढ़ाते हैं। अल्लाह ने पीछे ही आपको बता दिया कि यमहकुल्लाहु रिबा व युर्बिस सदकात, अल्लाह सूद को खत्म करता है और सदकों को परवान चढ़ाता है। जिस सोसाइटी में सदका आम होगा, जहां गरीब को उसके हक दिए जाएंगे, अमीर को उसके हक दिए जाएंगे, अल्लाह के हुक्म से वहां खैर होगी। अल्लाह के नबी खुद अपनी मर्जी से कमजोरियों में रहते थे, गुर्बत में रहते थे। दौलत की कमी मक्का में नहीं थी, मदीना में नहीं थी। आप ये मत सोचिए कि हमारे नबी के पास दौलत नहीं थी, आती बहुत थी, रहती नहीं थी। ये इस्लाम का एक नसरी है। मोमिन के हाथ में दौलत टिकती नहीं है, इधर से आती है वो इधर लगा देता है, वो अपने लिए सदका जारिया बना लेता है, उधर आती है उधर दे देता है। जब हम जमा करते हैं फिर सेविंग, फिर उस पर क्या मुसीबतें। ये तो एक पूरा इश्यू है। बल्कि आज सुबह ये एक ऐसी बात सामने आई कि उन्होंने कहा कि इस पर तुम एक वर्कशॉप कर सकते हैं, अगर जिंदगी रही रमजान के बाद, क्योंकि आजकल तो दिन बहुत थोड़े हैं, मुख्तसर है वक्त, लेकिन रियली आज के दौर में इस मौजू पे बात करने की जरूरत है कि नहीं है। जब तक हमारे कंधे हल्के नहीं होंगे, भागेंगे कैसे? रो रो के हम कहते हैं अल्लाह हमसे कुछ काम करा काम करा, उधर से घर से मुतालबा आता है आपको जॉब करनी पड़ेगी, यू नीड टू ब्रिंग मनी। क्यों? क्योंकि कर्जा करना। आज ये जुमला इतनी कसरत से सुनती हूँ और मैं हैरान हो जाती हूँ बोलते हुए लोगों के मुझसे। एक मर्द ही है कमाने वाले घर में, औरतें कहती हैं, तरस खाती है। स्कूलों में आते हैं ना फीसिस और इस तरह की चीजें या कोई ऐसी दीन की चीजें, कहते हैं क्या करें, बस हमारे घर में एक कमाने वाला ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अब्बा के घर में भी एक ही था, हमारे दादा के घर में भी एक ही थे, हमारे नाना भी एक ही थे। अल्लाह ने कहा रिजालु कवामून अला निसा, हम अगले ही समय पढ़ेंगे सूरत के, तो शुक्र कीजिए एक ही हो। मैं कहती हूँ कि अल्लाह ना करे आप चाहती हैं दो कमाने वाले हो। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है और इसने एजुकेशनल सेटअप को बदल दिया। आज बेचारी बच्चियां भी वो सब्जेक्ट लेती हैं जिसकी बाद में कोई वैल्यू है, जिसके बाद वो मनी कमाए। हालांकि बीइंग अ गर्ल्स, जैसे आप मशल यंग बच्चियां पढ़ें, आप इस दुनिया के स्कूलों में कॉलेजों में यूनिवर्सिटीज में जाएं, आपको क्या पढ़ना चाहिए स्पेशलाइज के तौर पे? यू नीड टू बी टीचर, क्योंकि औरत के मिजाज में टीचिंग है। आपको डे केयरिंग सीखनी चाहिए ताकि हम सोसाइटी के बच्चों को एंटरटेन करें। औरत को अगर जॉब करनी है वो करेगी, किस तरह करे जिसमें उसका औरत बन रहे, और जितनी बेस्ट बेबी सिटर औरत हो सकती है वो मर्द नहीं हो सकते। औरतों को औरतों के काम सजते हैं। अब एक औरत को आप सूटेड बूटेड करके आप उसको किसी ऑफिस में बिठा देते हैं, वह मर्दों में गिरी है, इश्यूज इश्यूज है। आप एक औरत को पायलट बनाते हैं, इश्यूज ही इश्यूज है। ये सब उलट है, लाइबिलिटीज है। ठीक है ये औरतों के सब्जेक्ट है, ये मर्दों के, और उसमें औरतें बहुत अच्छी होंगी। जब आप कहते नहीं औरत कंप्यूटर पढ़े, आगे आप देखिएगा कि आज हमारा पूरा सोशल सेटअप ही क्यों बिगड़ गया, कि हमने अपनी तरबियत में बेटे और बेटे का फर्क मिटा दिया, फिर घर टूट रहे। औरत औरत बन के जीना नहीं चाहती, शादी के वक्त कहती तुम कौन हो, मैं भी पैसे लाती हूँ तुम भी लाते हो, नतीजा क्या हुआ आप सब देख रहे हैं। तो दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारी प्रायोरिटीज बदल दे और हम इस्लाम के इन सारे अहकाम को संजीदगी से ले। और साथ ही फरमा दिया तिल्क हुदूदुल्लाह, इट्स नॉट अ सिंपल इशू। ये मैटर कौन सा है, लिमिट्स को क्रॉस करने का। आज उम्मत मुस्लिमा ने अगर अपना फैमिली सेटअप और इकोनॉमिकल सेटअप बदला है तो दे आर गोइंग बियॉन्ड देयर लिमिट्स। आप स्पीड अपनी लिमिट से ऊपर करें तो देखिए टिकट मिलता है ना। आप नो जोन में जाके गाड़ी खड़ी कर दें, नो एंट्री में गाड़ी खड़ी कर दें, टिकट लगता है ना। तो आज ये उम्मत मुस्लिमा पे जो मुश्किलात है ना, ये टिकट्स पड़े हुए अल्लाह की तरफ। टिकट ही कहते हैं इधर भी, क्योंकि अब ये मेरी मिसालें वैलिड नहीं रहती, कहीं फाइन है, इधर शायद कुछ लोग कुछ और कहते हैं, लेकिन आप समझ तो रहे हैं। इसी तरह गैस और ऑयल का फर्क लोगों को समझ नहीं आता। अमेरिका में पेट्रोल को भी गैस कहते हैं ना, गैस स्टेशन। लेकिन यूके में जब गई मैंने गैस स्टेशन किया तो लोग मेरा मुंह देख रहे होते थे, गैस स्टेशन क्या होते हैं, तो उनको कहती पेट्रोल पंप। तो फर्क होता है, इसलिए आप बाहर से जो सुन रहे हैं वो खुश होते हैं, लेकिन आपको जो मेरी बात समझ आए तो मुझे माफ करें, लेकिन ये हकीकत है कि हम इन सारी चीजों को जब तक नहीं समझेंगे सुख चैन नहीं आएगा। पहले कपड़े तो ढंग के पहने। मैं इसको इस तरह सोचती हूँ, मिसाल देती हूँ, आप कहीं जाए, जैसे अब जहां हम आए, मैं अपने ऊपर लूंगी, मैं यहां आई मैंने शावर लिया, मैंने अपने लिए रिलैक्सिंग कपड़े पहने जो मौसम के हिसाब से हैं, मैं जिसमें क्वाइट फील करूं, जिसमें मुझे सुकून मिले। अब मैं मुतमईन हूं, मैंने कंघी की, मैं अपने आप को साफ सुथरा किया ताकि मुझे नींद ना आए, मुझे देखकर आपको रोना ना आए कि हमें क्या देखना पड़ रहा है, आई एम फाइन। अब आप सोचिए इसकी बरक्स इस वक्त गर्मी और बाहर 100 कुछ टेम्परेचर है, तो आप सोचिए कि इस वक्त अगर आप में से कोई वूलन सूट पहन के बैठा हो और उसने चुभने वाले कपड़े पहने हो और उसने खींच के कुछ चुटिया की और चुटिया का एक बाल ही सिर्फ कट रहा हो, खींच रहा आपको, क्या आप इधर मुतमईन होंगे? नहीं होंगे ना। पहले अपने आप को मुतमईन करें। मैंने और आपने बहुत बड़े काम करने हैं। जब मैंने और आपने दुनिया को सर्व करना है तो पहले खुद को तो सर्व करें। और इसकी बरक्स अगर हम यहां बैठे टेढ़े मेढ़े, हमें जरा से जूता चुभ रहा हो ना तो हम चल नहीं सकते। तो इस वक्त हमारा हाल ये है, ये जो हमारी रूह कचुके ले रही है ना, उसकी वजह ये है कि हमने अनसूटेबल कपड़े पहने हुए हैं। आज हमारी ड्रेसिंग ठीक नहीं है, हमारे चलने फिरने का अंदाज ठीक नहीं है। जितनी गाड़ी आज की एक औरत चलाती है, इज्जती औरत पे, औरत का वो फेमिनिननेस और उसकी वो सॉफ्टनेस, और वो कहते हैं कि औरत फूल की कली और वो फुला, वो खत्म हो गई। कहाँ रह गई आज की कलियां? वो बेचारियों ने ग्रोसरियों के डब्बे भी खुद उठा के लाने, उन्होंने गैस स्टेशन पे गैस भी खुद जाके डालनी है। अब आप माइंड ना करें, मैं बहुत ओल्ड फैशन हूँ, आप सब मुझे बर्दाश्त कर ले, लेकिन ये मेरे मशवरे नहीं है, ये कुरान के। इस्लाम औरत को एक फूल की तरह, एक पत्ती की तरह, एक कली की तरह सिक्योर करता है। हैंडल विद केयर, दे आर फ्रेजल्स। अल्लाह के नबी ने एक मौके पे किसी ऊंट वाले को चलते हुए तेजी से और झटके खाते हुए देखा और कुछ राइम्स पढ़ रहा था, तो आपने कहा बी केयरफुल, औरतें हैं तुम्हारे साथ, ये नाजुक नगीने हैं, ये टूट जाएंगे। इस्लाम औरत को ऐसे पेश करता है या ऐसे हैंडल करता है जैसे क्रिस्टल की डॉल है, वेस्ट ने उसको आयरन वुमेन बना दिया, ये फर्क है, इसलिए औरत परेशान है। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमें इस्लाम की कदर की तौफीक अता फरमाए। फरमाए अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, इसे अल्लाह ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, और इन बागों में वो हमेशा रहेगा, और यही बड़ी कामयाबी है। इसके बरक्स व मैयासिल्लाह व रसूलहू व यतअद्द हुदूदहू युदखिलहू नारन खालिदन फीहा, और जो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करेगा और इसकी मुकर्रर की हुई हदों से तजावुज करेगा, इसे अल्लाह आग में डालेगा जिसमें वो हमेशा रहेगा, और इसके लिए रुस्वा को नजाब है। अल्लाह ताला हमें बचा के रखे। हाईलाइट करेंगे सूरत निसा का दूसरा बड़ा टॉपिक, अल्लाह और उसके रसूल का फैसला, आखिरी फैसला है। बेसिकली पूरी सूरत निसा तीन हिस्सों में, फर्स्ट पार्ट है उसमें घरेलू मसाइल, शादी और ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं। दूसरे हिस्से में अतीउल्लाह और अतीउ रसूल, यानी रसूल की क्या इंपॉर्टेंस है जिंदगी में, और तीसरे और आखिरी हिस्से में निफाक और मुनाफिकत। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम इन सारी चीजों को समझो कि तुम जब तक अल्लाह के नबी की जिंदगी को नहीं मानोगे, बात नहीं बनेगी। और हकीकत यह है कि जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहसिन नहीं समझेंगे, हम सुन्नतों पर अमल कर नहीं पाएंगे। इसके बाद आयत नंबर 14 और 15, दो आयतें होमोसेक्सुअलिटी एंड बींग लेसबियन होना है। समझ गए होंगे इंग्लिश में जिन्होंने समझा, यानी मर्द के मर्द से और औरत के औरत से ताल्लुकात, और इसी तरह से जिना की सजाओं के हिस्से की ये एक इन बिटवीन फेज थी जिसका यहाँ जिक्र किया गया। वल्लातियातीन अल्फाहिशतमिन निसाइकुम, तुम्हारी औरतों में से जो बदकारी की मुर्तकिब हो, इन पर अपने में से चार आदमियों की गवाही ले लो, और अगर चार आदमी गवाही दे दे तो इनको घरों में बंद रखो यहां तक कि इनको मौत आ जाए, या अल्लाह इनके लिए कोई रास्ता निकाल दे, और तुम में से जो इस फेल का इर्तकाब करें इन दोनों को तकलीफ दो, फिर अगर वो तौबा करें और अपनी इसलाह कर लें तो इनको छोड़ दो, कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसकी सारी डिटेल सूरत नूर में आएगी। सूरत नूर का आगाज ही जिना और उसकी सजाओं के बारे में, लेकिन यहां हमें इतना समझ आ गया कि किसी मुआशरे को जो नासूर, यानी किसी सोसाइटी को जो एक किस्म के आप कह लीजिए कि वायरस चिपके होते हैं, उसमें एक वायरस बेहयाई और बदकारी है। जब इस्लाम के अहकामात पे अमल ना हुआ, या वैसे ने तो उन्हें अहकामात को मानना भी नहीं था इसलिए कि वो उनके लिए थी ये भी नहीं, तो औरतें जलील हो गईं। जितनी औरत बाहर निकली, जितना औरत ने खुद को एक्सपोज किया, उतना जिना और फाहशी आम हो गई। जिन मुल्कों में आज भी औरतें बाहर छुप के आती हैं, वहां जिना की रेशो ना होने के बराबर है। अल्लाह ने यहां ये बता दिया, मसला फितना औरत के बाहर निकलने से हुआ, और जब बाहर भी निकले और ऐसे स्टाइल में कि कोई शरीफ मर्द अपनी आंखें ना उठा सके, तो याद रखो कि वो सोसाइटी पे रहने के काबिल नहीं रहती। तो लिहाजा इस चीज को सामने रखते हुए अगली आयत में मर्दों के बारे में भी यही बात कर दी, वल्लज़ानियात यानिहिमा मिनकुम मिनकुम फआज़ूहुमा, और तुम में से जो इस फेल का इर्तकाब करें, यानी जो मर्द, इन दोनों को तकलीफ, तो फिर वो अगर तौबा करें और अपनी इसलाह कर लें तो इनको छोड़ दो, कि अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इसके बाद आयत नंबर 17 और उससे अगली दो ये जो आयतें हैं, ये तौबा के बारे में कुरान पाक की खूबसूरत तरीन आयतें हैं। यानी मुझे अगर कभी तौबा के मौजू पे कोई कहे कि दर्स हो, तो मैं ये आयतें चूज करूंगी। तीन मुख्तलिफ किरदार हैं, आपने मैंने इसमें अपने आप को ढूंढना है। कैसे? मैं वहां रुकूंगी जहां एक होगा, तो वहां वन लगा लीजिएगा। इन्नम तौबतुल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलूना सुअ बिजहाला, हाँ ये जान लो कि अल्लाह पर तौबा की कबूलियत का हक उन्हीं लोगों के लिए है जो नादानी की वजह से कोई बुरा फेल कर गुजरते हैं और इसके बाद जल्द ही तौबा कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर अल्लाह अपनी नजर इनायत से फिर मुतवज्जे हो जाता है, और अल्लाह ताला सारी बातों की खबर रखने वाला और हकीम और दाना है। ये है असल में तायबीन। कैसे गुनाह हुआ? नादानी में, पता नहीं था। एक तो था इल्म नहीं था, दूसरा ये कि उसकी शिद्दत नहीं पता थी कि क्या था। अब कोई गुना पिछली जिंदगी का सोचिए, इस किताब के सफर से पहले जो हो गया सबको बचपन से पता है क्या जायज है क्या नहीं, लेकिन नफ्स का गलबा, जहालत या इग्नोरेंस के मानों में भी है, नफ्स के गलबे भी, तौबा कर लीजिए बस खत्म। अल्लाह कहते हैं जो फौरन तौबा कर लेता है उसको गुनाह का पता लगे मैं उसको माफ कर दूंगा। दूसरा कौन सा गिरोह है जिनके अल्लाह बिल्कुल नहीं कबूल करता? मगर तौबा इन लोगों के लिए नहीं जो बुरे काम किए चले जाते हैं, यहाँ तक कि जब इनमें से किसी की मौत का वक्त आ जाता है तो उस वक्त वो कहता है क्या मैंने तौबा की। ये कौन था? फिरौन मरते डूबते कह रहा है तौबा कर रहा हूं। ये कौन से लोग हैं? मौत के फरिश्ते को देखकर बोले क्या हम तौबा करते हैं? क्या पुलिस मैन को देखकर कोई कहे कि मुझे माफ कर दो, आइंदा ओवर स्पीडिंग नहीं करूंगा, आइंदा सीट बेल्ट लगाऊंगा, तो पुलिस मैन छोड़ देगा उसको? वो कहेगा अभी तो आप टिकट लीजिए, बाद की बात बाद पे है। बिल्कुल इसी तरह से जो मौत का इंतजार कर रहे हैं गुनाहों को छोड़ने के लिए, उनकी तौबा कबूल नहीं होती। हर चीज का एक टाइम है, टाइम बाउंड चेक है तौबा। मालम युगर गिर के लफ्ज आते हैं, गरगरा मौत की हिचकियां, डेथ टाइम और उससे 3 साल पहले का वक्त है, वो कितनी लंबी अल्लाह नोस्ती बस। इसलिए कभी गुनाहों की गंदगी कंधों पे उठा के ना फिरे, तौबा के अपने गुनाहों को फेंक दे, उतारिए उस कंधों को हल्का कीजिए। जो लोग आप देखिए कि कोई चीज उठा के फिरते हैं उनको आप कहेंगे आप क्यों इस बोझ को लेके बैठे हैं, इसी तरह गुनाह का एक बोझ होता है, गिल्ट होता है, यही फिर डिप्रेशन में बदलता है, फिर यही लोगों को दुनिया से बेजार कर देता है। तो अल्लाह ताला कहते हैं किसको तौबा कर लो। अब तीसरी किस्म के लोग हैं, और इसी तरह तौबा इन लोगों के लिए भी नहीं जो मरते दम तक काफिर हैं, ऐसे लोगों के लिए तुमने दर्दनाक सजा तैयार की है। यानी कुछ को तो मौत के फरिश्ते से भी डर कोई नहीं लगता, वो कहते हैं देखेंगे जो होगा। इसके बाद अरब माशरे की एक और बुरी रस्म क्या थी कि औरतों के ऊपर बहुत ही जारादारी रखते थे, यानी वो औरतों को अपनी मलकियत समझते थे। करते क्या? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यहिल्लु लकुम, ए ईमान लाने वालों तुम्हारे लिए ये हलाल नहीं कि जबरदस्ती औरतों के वारिस बन बैठो, और न ये हलाल है कि इन्हें तंग करके इनके मेहर का कुछ हिस्सा उड़ा लेने की कोशिश करो जो तुम इनको दे चुके हो। अगर वो किसी सरीख बच्चलनी की मुर्तकिब हो जाए तो अलबत्ता तुम्हें उनको तंग करने का हक है। इनके साथ भले तरीके से जिंदगी बसर करो, अगर वो तुम्हें नापसंद हो तो हो सकता है कि तुम्हें कोई चीज पसंद ना हो और अल्लाह ने उसमें कुछ भलाई रख दी। ये है इस्लाम का मिजाज। नहीं बीवी पसंद, सब्र कर लो, सकता है औलाद अच्छी दे दे, एक आदत नहीं अच्छी दूसरी दे दे, दूसरी पे गौर कर लो। और अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी ले आने का इरादा ही कर लो तो ख्वाह तुमने उसे ढेर माल ही क्यों ना दे दिया, इसमें से कुछ वापिस ना लेना, क्या तुम इसे बहतान लगाकर और सरीख जुल्म के साथ वापिस लोगे? आखिर तुम इससे किस तरह ले लोगे जबकि तुम दोनों एक दूसरे से लुत्फ उठा चुके हो और वो तुमसे पुख्ता अहद ले चुकी है। ये है इस्लाम का मिजाज, पॉजिटिव एटीट्यूड। बुरे दिनों में अच्छी यादों को ना भूलो। आज कल्चर क्या? शादी पे तोहफे, मंगनी की रिंग, आपस में मिलना, और फिर शादी के बाद हनीमून ट्रिप और होटलिंग और दिस एंड दैट, और जब छोड़ा तो इतनी गालियां, इतना एक दूसरे पे इल्जाम तराशियां कि अल्लाह की बना यहाँ अल्लाह आपको मुझे क्या सिखा रहा है। अगर ना साथ रहना है तो अच्छा तोहफा देकर छोड़ो। क्यों तुम उनको बुरा बना के करते हो? क्योंकि तुमने उनसे कुछ तो खैर ली थी। देखिए इंसानी ताल्लुकात में अगर हम ग्रेटफुलनेस का इजहार करेंगे ना तो हम कभी बुरे वक्त में किसी को बुरा नहीं कहेंगे। इट्स ओके, हमेशा अच्छा है कभी बुरा भी कर दिया। और फॉरगिव फॉरगेट, ये है कामयाब जिंदगी का सूत्र। फॉरगिव फॉरगेट और इग्नोर ग्रेसफुली। स्माइल दें, एहसास बिन अपने हस्बैंड को ने दे कि उनकी बात से आपका दिल टूटा, वो वक्त आप गुजार ले सब्र से, फिर जब कभी मौका बनेगा उनको खुद रियलाइज हो जाएगा। किसी अच्छे वक्त में उनकी बुरे रवैये की बात करेंगी तो वो कहेंगे अच्छा इतनी बड़ी बात मैंने कह दी थी और तुमने कुछ नहीं रिएक्शन लिया, थैंक यू सो नाइस। और अगर आप आग की तरह माचिस की तीली देकर सुलग गई तो घर जल जाते हैं। आज घरों के जलने की एक बहुत बड़ी वजह यह कि टॉलरेंस खत्म हो गया, बर्दाश्त का लेवल खत्म, और दूसरी बहुत बड़ी वजह फिल्में। फिल्मों में तो आप देख ही रहे हैं शादियां कैसे होती हैं, तलाकें कैसे होती हैं। आज कुरान का हुक्म पढ़ चुके हैं पीछे कि कितने प्यार से 3 महीनों में तलाक का इशू पूरा करो। हम कहते हैं तलाक है, कैसे फिल्मों में एकदम गरज के हीरो कहेगा तुझे तलाक है तलाक है, फिर वो पांव पड़ेगी नीचे गिरेगी, फिर बिजली गिरेगी, फिर बारिश होगी, फिर वो सर पे एक संदूक रख के खड़ी और वो जा रही है। जब फिल्मों से निकाह और शादियां सीखेंगे तो यही हालात होंगे, और शादियां जैसी होती है वो अब सब पता, हीरो हीरोइन के पीछे फिर रहा है, भाग रहा है, इधर हो रहा है, और अब्बा हमेशा विलन है, और रात को लड़की घर से भागती है, सारा हॉल सोच रहा होता है अल्लाह करे अब्बा ना उठे लड़की भाग जाए। सबकी हमदर्दियां बच्चियों के साथ है। अब जब फिल्मों से ये शादी ब्याह मंगनियां सीखेंगे तो आम जिंदगी में तो ऐसी कोई नहीं, सच बताया आप, इस जो मैरिड सिस्टर है, किसके शोहर ने आज तक उनको खिड़की में से घूम के चाय का कप पकड़ाया है? आप एडवर्टाइज में देखते हैं कि बेगम नाराज है और मियाँ साहब उसके जुड़े में फूल लगाते हैं। आप कहते हैं मैं कोई हीरोइन से काम हूँ, मैं भी आज यही करूंगी। अब वो थके हारे बेचारे ट्रैफिक में फंसे हुए आए, हो सकते वॉशरूम में जाना हो, और आप उनको मूड दिखा रही हो, कहते नहीं तो ना से मैं सो रहा हूँ जाके ऊपर। फिर आप कहती हैं देखो जादू कर दिया सास ने, ये नंद के घर से आज कोई चटनी खा कर आए हैं, ये कुछ नहीं हो सकता। आप और मैं अगर दूसरों से सीखेंगे, अच्छा आपके दिल को क्यों लगी है ये बातें, इसकी क्या वजह, इतना तो मैंने आपको कभी खुश नहीं देखा। लेकिन बहरहाल बी रियलिस्टिक, बी रियलिस्टिक। आज बच्चियों को घर शादी के बाद बनाने में जो बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है, उनकी एक्सपेक्टेशंस एंड उनकी होप्स बहुत नॉन रियलिस्टिक है, और वो फिर उसी के साथ टैली करती हैं। हालांकि रियल लाइफ कितनी बेटर है, आप एक एडवर्टाइजमेंट तो देखें जरा, घी के डब्बे की, बेगम साहिबा इतनी प्यारी साड़ी पहनी, पतली दुबली, और यूं अदास से वो पैन में वो घी डालती हैं, फिर पकोड़े डालती हैं, फिर झूमती हैं, और मियाँ आते कहते वाह क्या समोसे बनाए। अब वो एक मॉडल किस्म की बीवी, और घर में आप जैसी बीवी जिसके कपड़ों से लहसुन प्याज की बुआ आ रही है, तो मियाँ का मिजाज बिगड़ेगा कि नहीं बिगड़ेगा? जितना हम बाहर की दुनिया को ज्यादा देखते हैं, उतना हमें घर बुरा लगता है। घर पे सीधी साधी जिंदगी होती थी, गुजर जाती थी, कोई किसी को आई लव यू नहीं कहता था, कोई किसी को वैलेंटाइन पे फूल नहीं देता था, कोई एनिवर्सरी नहीं मनाता था। आप पूछिए उनकी जिंदगियां कितनी हसीन थी। आज ये सारे काम करके भी खुश नहीं है, क्योंकि नजरें बाहर लगी हुई है। तो अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं मियाँ बीवी के एक दूसरे के साथ रहना एक बहुत बड़ा आर्ट है, तुम इसको मुझसे सीखो, तुम दुनिया वालों से ना सीखो वरना मुश्किल हो जाएगी। फिर इसके बाद एक और बड़ी बुराई थी अरब माशरे में, अपनी ही माओ से निकाह कर लेते थे। कौन सी माए? सौतेली माए। तो बापों की बीवियों से निकाह करते थे, अल्लाह ने हराम कर दिया। कैसे? वला तन की हुमान कहावा उकुमिन निसान, और जिन औरतों से तुम्हारे बाप निकाह कर चुके इनसे हरगिज निकाह ना करो, मगर जो वो पहले हो चुका सो हो चुका। इसको हाईलाइट करिए, कुरान का इतना प्यारा सवाल है, आगे भी आपको ही नहीं आया तो मैं मिलेगा, तो मैंने अभी अलर्ट दे दिया आपको। इल्ला मा कद सलम, खुशगवार जिंदगी का ये रूल है, बेस्ट मेरिट लाइफ के, इल्ला मा कद सलम, जो हो गया गया। पंजाबी में बता दो, कितनों को नहीं आती पंजाबी, हाथ खड़ा करें फिर मुंह बना दीजिएगा। मिट्टी पाओ, आगे समझ, मिट्टी पाओ का मानी है कि जो बात होगी उसको मिट्टी डाल दो, यानी डोंट डिस्कस दिस, डोंट मेक अ इशू। आज बच्चियां और बच्चे शादी के बाद छोटी छोटी बातों को इशू बनाए बैठे होते हैं, हो गया तो हो गया, दैट्स इट। देखिए गाड़ी चलाते वक्त आप विंडस्क्रीन में सामने देखते हैं ना, बैक मिरर में देखते रहेंगे तो क्या होगा, गाड़ी टकरा जाएगी। आप देखिए कि रियर मिरर जो है वो छोटा सा होता है, आपके सामने ही लगा हुआ है, और सामने का बड़ा, अगर उसको बड़ा कर दे उसको छोटा करें क्या होगा, तो वही होगी। माजी के आईने में देखने वाले कभी खुश नहीं होते। हर रात सोने से पहले के इल्ला मा कद सलम, जो मियां ने किया, जो सास ने कहा, जो मैंने किया, जो बीवी ने कहा, हर रिश्ते को माफ करके सोए, फिर देखिए आपका दिल कितना मुतमईन रहेगा। फिर इसके बाद इन्नहु काना फाखिशतम व मक्ता, और हकीकत ये कि ये बेहयाई का फेल है और नापसंदीदा है, बुरा चलन है।